नमस्कार, आज 28 जुलाई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं त्रिविधा मिश्रा, दिल्ली से हैं, और नफीस, आप भी दिल्ली से ही हैं। तो त्रिविधा और नफीस, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब इस स्वागत के भाग के बाद अब हम लोग आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। और पिछले कुछ दिनों से मैं लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत सुल्तान फिल्म के माध्यम से जिंदगी के कुछ सिद्धांतों का, कुछ रहस्यों का, कुछ विचित्रताओं का, कुछ शक्तियों का उद्घाटन करने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, पता नहीं आप लोगों को वो बातें कितनी कन्विंसिंग लगी होंगी, क्योंकि जनरली होता यह है कि लोगों की धारणा यही रहती है कि यार फिल्मों में और खासकर सुल्तान जैसी फिल्मों में हम कैसे जिंदगी की तलाश कर सकते हैं। लेकिन मैंने खासकर इसी धारणा को ब्रेक करने की दृष्टि से ये बातें आपके सामने रखी हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी अपनी अपनी तरफ से सुल्तान फिल्म के बारे में सोचा होगा, और सोचने के बाद जो भी बातें मैंने बताई हैं उन सब से एक तुलना करके शायद जरूर कुछ न कुछ तो अपने लिए हासिल किया ही होगा। तो मित्रों, चूंकि फिल्मों का ही एक सिलसिला सा चल रहा है, तो मैं इसी क्रम में अब कुछ दूसरे तरह की बातें करना चाहूंगा जो होगी कुछ फिल्मों के आसपास ही। लेकिन हाँ, बिल्कुल परेशान न होइए, अब फिल्म सुल्तान पर बात नहीं होगी, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर हम बातें करेंगे। मित्रों, चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना है, मैंने उनके काफी आपसे चर्चा भी की है, मतलब मेरे बहुत ही दिल के करीब चार्ली चैपलिन हैं। किस तरीके से एकदम छोटे से स्तर से कितनी महानता को उन्होंने हासिल किया, वो न केवल एक महान कलाकार ही थे बल्कि फिल्मकार भी थे, बल्कि उससे भी ज्यादा मुझे एक फिलॉसफर, वो बहुत ही मानवीय व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, मानवतावाद से भरे हुए व्यक्ति। दोस्तों, उनकी एक फिल्म है सिटी लाइट्स, आपने कभी सुनी हो। कुछ उनकी फिल्में बड़ी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, समझ लीजिए कि जो बिल्कुल इतिहास के हिस्से बन गए, जिसमें द गोल्ड रश आपने शायद नाम सुना, मॉडर्न टाइम आपने इसके बारे में सुना हो सकता है कि देखी हुई भी हो आपने ये फिल्म, और एक और ऐसी ही फिल्म है उनकी सिटी लाइट्स। इसी के एक दृश्य के बारे में और इससे जुड़ी हुई एक घटना मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हुआ ये दोस्तों कि सिटी लाइट्स के फिल्म के बिल्कुल आखिरी दृश्य की ये बात है, अगर आप उसका आखिरी दृश्य देखेंगे तो उसमें ये दिखाया हुआ है कि एक फूल वाली लड़की है, फूल बेचने वाली लड़की है, और वह जो है चार्ली चैपलिन के हाथ को छूती है, फूल बेचने वाली लड़की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़की थी वो अंधी थी, वो लड़की अंधी थी, लेकिन वो चार्ली चैपलिन के हाथ को स्पर्श करती है। उसमें फिर चार्ली चैपलिन उससे पूछता है कि क्या तुम देख सकती हो, मतलब अंधी लड़की से पूछ रहा है कि क्या तुम देख सकती हो। लड़की कहती है हां, अब मैं देख सकती हूं। चार्ली चैपलिन बिल्कुल चौंक जाते हैं कि कह रही कि हां, और वो भी अब मैं देख सकती हूं, इससे पहले तो वो देख नहीं सकती थी, लेकिन कह रही कि हां अब मैं देख सकती हूं। लेकिन कैसे, क्योंकि आंखों में रोशनी नहीं है, वह इसके बावजूद अगर देखने का दावा कर रही है, तो यह बात चार्ली चैपलिन को चौंका देती है। और फिर देखिए जो घटना घटती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दौर में होता यह है कि जो फूल देने वाली लड़की है, उससे पहले फिल्म में दिखाया हुआ है कि वो जो लड़की है वो उसे रोज फूल दिया करती थी। तो जैसे ही उस फिल्म में जो चार्ली चैपलिन है उसके हाथ के पोरों को स्पर्श करती है, पोर आप देखते हैं ना, जिसमें एक दो तीन उंगलियां रख रख करके गिनते हैं, जो विभाजित करती है हमारी उंगलियों की लंबाई को, पोर कहते हैं। तो जैसे ही उसे उनको स्पर्श करती है वो अंधी लड़की, और उसको स्पर्श करते ही उसे एहसास होता है जैसे कि उसके उसे आंखें मिल गई हों, उसे आंखें मिल गई हों मित्रों, और वो कहती है कि हां मैं देख सकती हूं अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा, अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा मैं देख सकती हूं। दोस्तों आप केवल इसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल सा प्रसंग है मैंने जो बोला है। हिंदी फिल्मों में तो ऐसी खूब सारी चीजें आपको देखने सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इसको जरा सा महसूस कीजिएगा। एक घटना इसी से जुड़ी हुई दोस्तों कि इस फिल्म का जब प्रीमियम हो रहा था तो उस समय वैज्ञानिक आइंस्टीन जो थे वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। इस फिल्म के प्रीमियर में आइंस्टीन आए थे। मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं कि चार्ली चैपलिन और आइंस्टीन की 2-3 बार मुलाकात हुई थी, और आइंस्टीन यहां तक कि चार्ली चैपलिन आइंस्टीन के फ्लैट पर भी उनसे मिलने गए थे। तो दोस्तों जब ये फिल्म खत्म हो गई तो चार्ली चैपलिन ने देखा कि आइंस्टीन अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर धीरे धीरे अपनी डबडबाई हुई आंखों को पोंछते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही चार्ली चैपलिन ने यह देखा तो वो गदगद हो गए और वो मन ही मन बोले अब सारी दुनिया जाए भाड़ में, अब सारी दुनिया जाए भाड़ में। अगर आइंस्टाइन की आंखों में मेरी फिल्म के इस दृश्य ने आंसू ला दिए, उनकी आंखें डबडबा आई, उनको करुणा से भर दिया, तो अब मुझे किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि यह फिल्म कैसी है। पता नहीं मित्रों आपको ये प्रसंग कैसा लगा होगा, लेकिन मैं तो जब अभी कई बार मैं इसे पढ़ चुका हूं, अभी भी जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं रोमांचित हो गया हूं। मित्रों ये कला का कमाल होता है, ये कला का कमाल होता है। मैं इसी तरह से अब एक कहानी की अब आपको बात बताता हूं, इसी के माध्यम से मित्रों आप बहुत से कहानीकार, फिल्मकार, फिलॉसफी, लाइफ, इन सब चीजों के बारे में बहुत सी चीजें आप जान सकेंगे। मित्रों अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ओ हेनरी, अमेरिका के बहुत ही महान कहानीकार हैं। मैं मतलब इनकी कहानियों का एक तरह से दीवाना हूं। जब भी मुझे ओ हेनरी की कहानी पढ़ने को मिलती है तो मैं शायद ही उन्हें न पढ़ने से अपने आप को रोक पाता हूं, चाहे व्यस्तता कितनी भी क्यों न हो। और मेरे पास कई इनके कहानियों के संकलन भी हैं। ओ हेनरी दोस्तों उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है, जो बहुत ही जो मार्मिक भी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। उसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मेजाए, द गिफ्ट ऑफ द मेजाए। बेसिकली एक जापानी चुटकुला था, उस जापानी चुटकुले को आधार बनाकर ओ हेनरी ने यह कहानी लिखी थी। अब आप देखिए कि उस कहानी में है क्या, उस जोक में, फिर उन्होंने अपनी कहानी में उसे लिया है। उसमें होता यह है कि एक उसके नायिका है, एक स्त्री है जो अपने सिर के बाल, जो लट होती है ना, महिलाओं के बालों की एक लट सी होती है जो उनके माथे के से लटकती रहती है, तो वो नायिका क्या करती है कि अपने इस लट को बेच आती है और बेचकर अपने शराबी पति के लिए एक बॉटल शराब खरीद लेती है और वो शराब लेकर के आ जाती है। और फिर जब उसका पति घर आता है तो फिर अपनी पत्नी के हाथ में शराब की बोतल देख करके गदगद हो जाता है कि अरे वाह क्या है, आज तो जश्न मनेगा, बिल्कुल आज तो शराब मतलब पत्नी ही लेकर के आ रही है, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि आज शराब पीने को मिले। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ड्राई डे होगा, लेकिन आज तो ये बिल्कुल एक आर्द्र दिवस हो गया उसके लिए। तो दोस्तों इसके बाद जब वो गदगद हो जाता है अपनी पत्नी के हाथ में शराब की बोतल देखता है, और इसके बाद वो अपनी पत्नी के बालों में उंगलियां फेरता है ना, उसको थोड़ा सा प्यार आ गया पत्नी पर कि वो शराब लेकर के आई है। बाल में हाथ फेरने के बाद और मित्रों फिर वो कहता है कि इन बालों से अभी आधी बोतल और आ सकती है, बस कहानी खत्म हो जाती है। मित्रों इस कहानी को भी आप तब तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप संवेदना के स्तर पर न उतरे। इन दोनों फिल्मों में तीनों जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, ये संवेदना की घटनाएं हैं। चाहे वो फूल बेचने वाली लड़की को चक्षु एक दिव्य दर्शन हो रहे हैं, मतलब अपने शरीर के माध्यम से वह दर्शन कर रही है, स्पर्श ही उसकी आंखें बन गई हैं। संवेदना के स्तर पर आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर आइंस्टाइन की आंखें डबडबा रही हैं तो केवल आप संवेदना के स्तर पर उसे महसूस कर सकते हैं। और यहां उस नायिका की जो करुणा है, अपने पति के प्रति जो समर्पण का भाव है और उस समर्पण के भाव से जो करुणा पैदा होती है, उसको भी मित्रों आप केवल तब महसूस कर सकते हैं जब आप में संवेदना की गहराई हो। और सच पूछिए दोस्तों, तो कला चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो भवन हो, चाहे नृत्य हो, कोई भी कला क्यों न हो, उसका सही आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब आप उनसे संवेदना के स्तर पर जुड़ सकें। और यहां तक कि मैं ऐसे भी आर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं जो बहुत ही यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक हैं, जो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक हैं, जो बहुत ही ज्यादा तार्किक हैं, उन पर उनमें भी आनंद की प्राप्ति या कह लीजिए उससे रस आपको तभी महसूस होगा, उससे रस मिलेगा जब आप संवेदना के स्तर पर जुड़ेंगे। और आपने देखा मित्रों कि आइंस्टीन चाहे कितने भी तार्किक व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी बौद्धिक व्यक्ति क्यों न हो, वो थे ही, लेकिन वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत ही जबरदस्त किस्म की आध्यात्मिकता उनके पास थी। एक बात चलते चलते मित्रों यहां मैं आपको और बताना चाहूंगा, ताकि इसके माध्यम से आपको एक इतिहास की जानकारी भी होती रहे, दुनिया के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान सके कि कौन था, क्या था, कैसे था। जैसे आप जब किसी भी कलाकार के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों न हो, अगर आप सही मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसको सही रूप में जानना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उसके वक्त को जानिए। अगर आप उसके काल को नहीं समझेंगे तब आप उस व्यक्ति को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। तो यहां दोस्तों मैं आपको चार नाम बता रहा हूं, ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग आसपास हुए हैं और एक दूसरे से मिलते भी रहे हैं, और ये चारों व्यक्ति अपने समय के महानतम लोगों में रहे हैं। और ये जो मैं आपको चार नाम बता रहा हूं, ये चार अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। तो मैं समय को इसलिए बता रहा हूं ताकि इनके मूल्यांकन में फिर आपको बहुत ही मदद मिलेगी। दोस्तों जो मैं नाम बताने जा रहा हूं, इसमें सबसे सीनियर हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है 1869 है, और जिनका निधन हुआ 1948 में। 69 में दोस्तों आप देखिए 10-10 साल के फर्क में आपको एक विचित्र सी स्थिति दिखाई देगी। 69 में गांधी जी इस धरती पर आए, 79 में आइंस्टीन इस धरती पर आए, और 89 में चार्ली चैपलिन इस धरती पर आए। 10 साल का फर्क है। इसके बाद जिस तरीके से जितनी जल्दी धरती पर आया, जो जितनी बाद में धरती पर आया, यूं कह लीजिए वह उतनी बाद में इस धरती पर से गया, और जो जितनी जल्दी आया वो इस धरती पर से उतनी जल्दी चला गया, उसने विदा ले ली। गांधी आपको मालूम है कि 1948 में नहीं रहे, उनकी हत्या हुई थी। आइंस्टीन 1955 में नहीं रहे, 1955 में नहीं रहे, और चैपलिन 1977 में नहीं रहे। अब देख रहे हैं काल, जन्म का काल है 1800 को अगर आप पहले जोड़ दें तो 69 79 89, इसके बाद दोनों के सभी के जो निधन का जो ईयर है, फिर आप 1900 जोड़ दीजिए, सन 1900 में हम एंटर कर गए हैं, 48 55 77 77, ये तीन में आपको एक बड़े विचित्र किस्म की सिक्वेंसिंग मिलती है मित्रों। और इसके बाद इसी समय एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए थे जो विश्व शांति के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक हिंदी फिल्म में रोल भी किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बर्नार्ड रसल, रसल का नाम आपने शायद सुना हो। इनकी जो डेट ऑफ जो ईयर है 1872 की है, और ये 1977 में फिर इस दुनिया से इन्होंने विदाई ली थी 1970 में। काफी लंबी उम्र इनको मिली, लगभग 98 ईयर्स फिलोसफर थे। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों व्यक्ति एक ऐसे समय में हुए हैं जबकि इनका मिलना संभावित है कि ये आपस में मिलते रहे होंगे, तो इनकी आपस में मुलाकात भी होती थी। मैं रसल के बारे में तो नहीं बता सकता मित्रों, है ना, उनकी बायोग्राफी को मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जानता हूं, लेकिन गांधी जी, आइंस्टीन और चैपलिन के तो इतिहास में प्रमाण है कि ये आपस में मिलते रहे थे, इन सबकी मुलाकात हुई थी। मिलते रहते का मतलब है कि बार बार मिलते रहते थे, लेकिन मुलाकात हुई है, ये हमारे इतिहास का सौभाग्य था। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, पहली खबर आपने सुनी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के आप देख रहे हैं कि लंबे समय से विवाद चल रहा है और सरकार इसे पारित कराने के लिए बहुत उत्सुक है। देखते हैं कि इस मानसून सेशन में वो पारित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन न्यूज में आपने ये भी सुना था कि अभी हमारे जो वित्त मंत्री हैं, ये स्टेट के वित्त मंत्रियों के साथ इन्होंने बैठक की थी और स्टेट के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस अपने बताए थे। खासकर जो न्यूज में था वो रिजर्वेशन की 1% जो एक अलग से टैक्स लगाया जाना था, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के जो वित्त मंत्री थे उसके विरोध में थे। उनका कहना था कि इससे बेवजह वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और उसका पर्पज ये था, खासकर जो व्यवस्था की गई थी कि इस GST के लागू होने के बाद कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी आय में बहुत कमी हो जाएगी, तो यह था कि 1% अलग से टैक्स लगा करके उन स्टेट की भरपाई कर दी जाएगी कि उनको उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो स्टेट उसके विरोध में थे, तो अब उसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी बात मान ली है और उसे 1% को हटा दिया गया है। हमारे न्यूज में यही इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, इसके बाद आपने देखा कि ये जो एक जो वित्त मंत्रियों की जो इस राज्य सरकारों की जो बात मानने की किसी सूचना थी, जो खबर थी, उसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे स्वीकार कर लिया है। तो आपको खासकर मित्रों, जब भी ऐसे शब्द आते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद, इन दोनों में बहुत फर्क है, या लोकसभा या राज्यसभा, है ना। इसलिए कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार का मतलब लोकसभा नहीं, लोकसभा तो आम सभा है, उसमें तो पब्लिक भी है, जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो पब्लिक है, है ना। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब है कि जिनके ऊपर सरकार चलाने का दायित्व है, नीतियां बनाने का दायित्व है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो विधेयक बन गया है, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, अब फिर वो संसद में जाएगा, संसद के जिस भी सदन में जाए, दोनों सदनों में जाए, तो अभी वह प्रक्रिया बाकी है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया तो बात बन गई, अब तो GST बिल आ ही गया या और भी दूसरी चीजें। क्योंकि जब आप सुनते हैं कि नीति आयोग, सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग किया जाएगा, तब फिर आप देखते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल संसद में नहीं जाता है और वो नीति आयोग हो जाता है। तब फिर आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठता है कि इसका मतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो चाहे वो कर ले। मित्रों, ऐसा नहीं होता है, है ना। जो संविधान में जिन चीजों का उल्लेख हो चुका है, अगर उन चीजों में आपको परिवर्तन करना है संविधान, तो वो या तो नए विधेयक के माध्यम से होगा या संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से होगा, तो उसे आपको संसद में लाना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब यह हुआ यहां कि गवर्नमेंट हैज एग्रीड, ये मतलब हुआ। मित्रों, उसमें फिर आपने देखा कि न्यूज में यह भी बात थी और ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब अगर GST लागू हो गया तो एप्रिहेंशन है केंद्र राज्यों का कि उनकी आय में बहुत ज्यादा कमी आएगी, तो उसमें केंद्र सरकार ने उनको एश्योर किया है, मैं यहां रिपीट कर दे रहा हूं, कि 3 साल तक तो आपके आय में जितनी कमी आएगी उसका 100% की भरपाई हम करेंगे, 4th ईयर में 3 साल के बाद, 4th साल में हम उसकी 75% भरपाई करेंगे और 5th ईयर में हम 50% की भरपाई करेंगे। उनका यह मानना है कि इसके बाद वो बिल्कुल समान स्थिति में आ जाएगा और राज्य सरकारों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी आपने न्यूज में सुना है, तो मैं उसे क्लियर कर दूं कि इसका क्या मतलब था। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी, बेनामी संपत्ति से रिलेटेड एक विधेयक पारित किया गया है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या अखबारों में शायद कुछ आए तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज एक ठीक है, बहुत से ऐसे विधेयक पारित होते रहते हैं, तो सिविल सर्विस के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है, फिलहाल मैं अपने को कहने की स्थिति में नहीं पा रहा हूं। और देखते हैं, खासकर काले धन पर नियंत्रण के मामले में इसकी थोड़ी सी भूमिका तो डेफिनेटली होगी, लेकिन वो किस तरह की भूमिका हो सकती है, किस सीमा तक हो सकती है, तो कुछ तथ्य सामने आएंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, फिर आपने देखा कि दाल के मामले को लेकर है, और आप देख रहे हैं कि किसी जमाने में जो प्याज की बात होती थी, अब वो दाल की बात होने लगी है, और दालों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसको लेकर के सरकार थोड़ी परेशान भी है, और उसके लिए अलग अलग तरीके के सरकार स्टेप्स ले रही है। आपको चाहिए कि आप जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो उपाय किए गए हैं, अभी उसको रिकॉल कर लें। पीछे जो कुछ भी आपने खबरें पढ़ी हैं, खबरें सुनी हैं, अखबारों में जो कुछ भी पढ़ा है, या आपने कुछ नोट्स वगैरह तैयार किए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि एक बार उन्हें आप सरसरी निगाह से देख लें, ताकि वो आपका रिवीजन हो जाए। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार इसका एक बफर स्टॉक करने जा रही है, सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इसके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की है। आपको यह भी मालूम होगा कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो मोजाम्बिक वगैरह में भारत अपने बिहाव पर सहकारी कृषि करवाएगा और उनसे दाल मंगवाएगा। मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से राज्यों को सस्ती कीमत पर दाल प्रोवाइड कर रही है कि भई आप लोगों तक दाल सस्ती में पहुंचाइए, सरकार खुद भी दाल की बिक्री कर रही है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको याद आ जाने चाहिए। सिविल सर्विस की तैयारी तो मित्रों तभी होगी, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है, सिविल सर्विस की तैयारी का ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है। फिर आपने देखा कि न्यूज में एक बहुत अच्छी बात, एक आंकड़ा दिया गया, और वो आंकड़ा ये दिया गया कि भारत में जो दाल का उत्पादन है और दाल की जो डिमांड है, उत्पादन है मतलब दाल की जो सप्लाई है, डिमांड है मतलब जो मांग है, उसमें 76 लाख टन की कमी है, 76 लाख टन की कमी है। और सच पूछे तो ये कमी ही वह कारण है कि दाल की कीमतें लगातार इतनी अधिक रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल है कि ये 76 लाख टन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो मित्रों, सिविल सर्विस में इस तरह का एक प्रश्न बन सकता है कि दाल की मांग को पूरा करने के लिए कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं, आप अपनी तरफ से और कौन से कदम के सुझाव देंगे, या क्या कारण है कि हमारे यहां दाल का उत्पादन कम है। तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये ज्योग्राफी का भी हो जाएगा, एग्रीकल्चर का भी हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपके जो थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज मेंस का, या यहां तक कि फर्स्ट पेपर हो, ज्योग्राफी का भी सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2013 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें शुगर को लेकर के है, चीनी उत्पादन को लेकर के इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो दाल के उत्पादन को लेकर के फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है जनरल स्टडीज के। खैर, सवाल यह नहीं कि किस पेपर में पूछा जा सकता है, सवाल यह है कि पूछा जा सकता है या नहीं जा सकता है, और उस लिहाज से मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है। मित्रों, इसके बाद न्यूज में कोई जो एक बात थी वो खासकर रमन मैगसेस अवार्ड को लेकर के थी, और रमन मैगसेस अवार्ड, सच पूछे तो पहले तो इस तरह के प्रश्न काफी पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे सिविल सर्विस से तो सच पूछे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने बंद ही हो गए हैं। शायद यूपीएससी को लगता है कि लड़कों को ये चीजें मालूम रहती हैं, रट लेते हैं, इनके पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो रटने जैसी बात हो जाती है, सतर्कता का भी अब उतना सवाल नहीं रह गया है। लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट खबर हो सकती है, जिसमें आपने सुना है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है मिस्टर बेजवाड़ा विल्सन, जिन्होंने खासकर जो मैला ढोने की परंपरा के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त काम किया है सफाई कर्मचारी आंदोलन के लिए, उनको मैगसेस अवार्ड मिला है। और दूसरे जो मैगसेस अवार्ड पाने वाले हैं कर्नाटक संगीत के जो गायक हैं, कृष्णा कर्नाटक संगीतकार जो शास्त्रीय गायक हैं, उनको ये अवार्ड मिला है, जिनका नाम है टी एम कृष्णा। इन दोनों को रेमन मैगसेस अवार्ड मिला है और भारत में काफी लोगों को रेमन मैगसेस अवार्ड मिल चुका है। लगभग 50-55 लोग ऐसे हैं जो इससे पहले रमन मैगसेस अवार्ड पा चुके हैं, जिसमें हमारे अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, पांडिचेरी की जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी, उन्हें भी मैगसेस अवार्ड मिला है। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना ही है, उन्हें भी मैगसेस अवार्ड मिला था। उस समय मैगसेस अवार्ड जब किसी को मिलता था तो बहुत चर्चा होती थी, काफी आर्टिकल्स निकलते थे, इंटरव्यूज आते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैगसेस अवार्ड के प्रति लोगों की उतनी ज्यादा रुचि नहीं रह गई है, इसलिए वो एक सामान्य घटना बनकर रह जाती है। लेकिन मित्रों, नो डाउट कि पाना एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि सामान्य अवार्ड तो नहीं है, इसे एक तरीके से एशिया का नोबल प्राइज कहा जाता है, तो उस लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार ये है। तो इसके लिए मैं आपको जानने के लिए कि इन्होंने क्या काम किए थे, किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, दैनिक भास्कर का एक न्यूज आइटम है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, न्यूज EIR न्यूज में इतनी ही बातें हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा प्रेस क्लिपिंग्स के अंतर्गत मित्रों आज ब्यूरोक्रेसी के बारे में करना चाहूंगा, जो 3-4 मिनट का समय बचा हुआ है उसमें। मित्रों, अभी आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ चीजें हुई हैं, खासकर कल मैंने आपको इकोनॉमिक टाइम्स का ही था शायद एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, जिसमें जो केरल के अभी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक इकोनॉमिस्ट हैं जो भारतीय हैं उनको अपने एडवाइजर के रूप में बुलाया है, वो कानपुर के रहने वाले हैं। तो ये एक घटना इस रूप में है कि किस तरीके से सरकार बाहर के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में ला रही है, और ये डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है कि जो बाहर के एक्सपर्ट लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हों या एकेडमिक फील्ड में हों, सरकार ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा उनको लाए, क्योंकि चीजें अब बहुत ज्यादा, बहुत से ऐसे फील्ड हो गए हैं जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकलिटी की डिमांड करने लगे हैं। जैसे दोस्तों क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, फाइनेंस है, एनर्जी है, लैंग्वेजेज जैसे इश्यूज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे बहुत से फील्ड हो गए हैं जो आज बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो चुके हैं, किसी समय में नहीं थे। तो जब तक बाहर के प्रतिभाओं को ब्यूरोक्रेसी में नहीं लाया जाएगा, तब तक जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो सकेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, शायद वह भी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर आपने देखा कि अभी जब सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट की अधिसूचना जारी हो गई है और लोगों को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो अभी नौकरी में हों या रिटायर्ड हों, पेंशन के रूप में रह रहे हों, उन्हें अगस्त की सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगा, ये सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट। अब उसमें देखिए कि एक दो चीजें क्लॉज उसमें दी हुई हैं जिन पर आपका थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। उसमें यह है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत से हो सकता है कि आप लोगों में से नहीं जानते हो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली से हैं वो तो इसे जानते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है मित्रों वृद्धि, इंक्रीमेंट इंक्रीज करना, वृद्धि। सरकार ने यह फार्मूला दिया हुआ है कि जनवरी में जिसकी जितनी बेसिक सैलरी होगी उसमें 3% एक बार बढ़ जाएगा और जुलाई में फिर 3% बढ़ जाएगा, यानी कि साल भर में 6% उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप सामान्य रूप से ये कह लें। कितनी बढ़ेगी ये उनकी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करेगा, मतलब ये नहीं कि सबकी एक ही बराबर बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी की 20,000 रुपये बेसिक सैलरी है, तो 20,000 रुपये का उसको 3% जनवरी में बढ़ जाएगा और फिर 3% जुलाई में बढ़ जाएगा, तो बेसिक्स में बढ़ोतरी होगी। और ये जो इंक्रीमेंट का जो पैसा बढ़ता है इसको फिर डीए कहा जाता है, डियरनेस अलाउंसेस। तो ये बेसिक सैलरी का हिस्सा नहीं होता है, ये डियरनेस अलाउंसेस का हिस्सा नहीं सॉरी ये तो डीए होता है। इंक्रीमेंट जो है दोस्तों वो साल भर पूरा होने के बाद, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये डीए का हिस्सा है जो मिलेगा। जो इंक्रीमेंट है वो है कि जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट साल भर की नौकरी पूरी कर लेता है तो उसको एक फिक्स अमाउंट उसका बढ़ता है, ये डीए से बिल्कुल अलग होता है ना। डीए तो आपका कंपनसेशन है जो महंगाई बढ़ रही है उसको मीट आउट करने का। इंक्रीमेंट है कि आपने एक साल का एक्सपीरियंस ले लिया है तो एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको इतनी सैलरी बढ़ा दी जाती है। देखिए सैलरी दो तरीके से बढ़ती है, एक इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ती है, डीए के माध्यम से तो बढ़ती रहती है, वो एक अलग इशू है, दूसरा है इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ती, कि हर साल मान लीजिए कि जो जिसको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, हर साल उसको 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, और ये जो इंक्रीमेंट है ये उसकी बेसिक सैलरी का हिस्सा हो जाता है। मतलब अभी तक उसको 20,000 रुपए मिल रहे थे तो अब उसका 21,000 रुपए हो गया, अगले साल पूरा करने के बाद फिर 1,000 रुपए बढ़ जाएगा तो अब उसका जो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 22,000 रुपए हो गई। तो ये जो इंक्रीमेंट है गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं कि ये आपको मिले ही। अभी तक तो ये था कि जैसे ही आपका समय पूरा होता था, साल भर पूरा होता था आपके ज्वाइनिंग से, साल भर तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाता था। अब सरकार ने कहा है कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की कोशिश कर रही है, और चूंकि सिविल सर्विस से जुड़े हुए सब मामले हैं और आप भी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम भी है, और अगर आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो हर साल सिविल सर्विसेज को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कह लीजिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस लिहाज से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विसेज की बेहतरी के लिए या और भी किसी तरह से सरकार उसके बारे में कोई निर्णय लेती है तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसके लिए आप अलग से अपने पेज निर्धारित कर लें और उसमें पॉइंट्स लिखते चले। तो मित्रों न्यूज़पेपर से आज मैं आपको बहुत सी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और सभी बहुत अच्छी क्लिपिंग्स हैं, तो प्लीज आप उनको देख लीजिएगा, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मित्रों मैं दो मेल की बात करूंगा कि बहुत से स्टूडेंट जो फिफ्थ बैच में आने वाले हैं वो उन्होंने मेल लिख करके जानना चाहे कि सर इस बीच में हम क्या करें, अभी उनके आने के लगभग 2 महीने बाकी हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी आप कुछ मत करें, बस आप डेली ऑडियो गाइडेंस सुनी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज सुनिए, और थोड़ी बहुत अगर चीजें आपके इंटरेस्ट की हैं तो उन्हें देखते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या करें कि शुरुआत यहां की 15 दिन की क्लास के बाद से होगी और फिर आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं कि क्या करें, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा और इत्मीनान रखें। लेकिन डेली ऑडियो गाइडेंस, न्यूज, न्यूज़पेपर्स, इनके संपर्क में बिल्कुल रहें, और अगर आपके पास किताबें हैं तो एनसीईआरटी की किताबों को, जो नीचे के क्लासेस की किताबें हैं उनको आप पढ़ते रहिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देखते रहिए, है ना। तरीका तो यहां ही आपको तरीका ही सच पूछिए तो बताया जाएगा। दोस्तों मेरे पास ये भी मेल आए हैं कि जो प्री के एग्जाम होने में अब बहुत ही कम समय बाकी है, तो सर प्री के बारे में आप कुछ बताइए। मित्रों प्री के बारे में मैंने अपने ऑडियो बना करके और बकायदे .com पर भी, FEIS.com पर भी डाल दिए हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, जितनी भी बातें मुझे बतानी थी प्रिपरेशन को लेकर के वो सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो इसलिए प्रिपरेशन कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त कम है तो मैं उस पॉइंट को अब टच नहीं करूंगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। हाँ जहां तक मोटिवेशनल वाली बात है तो कुछ चीजें हम लोग शामिल कर सकते हैं तो वो हम लोग जरूर शामिल करेंगे। मित्रों एक जितेंद्र ठाकुर का जबलपुर से मध्य प्रदेश से ईमेल है, उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को काफी जानकारी देते हैं, और ठीक इसी तरीके से नंदलाल मीना भी डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो जितेंद्र और नंदलाल आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। विवेक कुमार है चंडीगढ़ से, उनके पहले भी मेल आए थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जो वीकली क्वेश्चंस देते हैं उनके बारे में आप चर्चा करते थे तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखें, उसे क्यों बंद कर दिया है। विवेक मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं केवल टेस्ट कर रहा था कि इसके प्रति लोगों में कितना रुझान है, और आपके अतिरिक्त किसी ने भी अभी डिमांड नहीं की है कि उस क्वेश्चन को कैसे आंसर में कन्वर्ट किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो फिर मुझे लगा कि अब स्टूडेंट ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि थोड़े से वक्त की भी काफी कमी पड़ जाती है, आप देखते हैं कि रोज मैं टाइम के स्ट्रेस में रहता हूं कि मुझे 30-32-33-34 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है और बात करने के लिए बहुत चीजें रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे भी सच पूछे तो ये लगा कि थोड़ा सा अगर मैं उसके बारे में 2-4 मिनट बता देता हूं तो शायद उससे बहुत ज्यादा फायदा न होता हो स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट ने फिर इसके बारे में कोई अपनी रिक्वायरमेंट शो भी नहीं की, इसीलिए मैंने उसको फिर अभी फिलहाल बंद करना ही उपयुक्त समझा है। तो मित्रों सभी में ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम है राहुल पांडे आरा बिहार से, यश शर्मा कानपुर से, सुधाकर यादव दिल्ली से, प्राची, अभिषेक रमण झा जमुई बिहार से, निखिल गौतम और जयप्रकाश भारद्वाज आगरा से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।